तो हम लोग आज आत्मा के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भगवद गीता का पहला ज्ञान है। जब तक व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं समझता है, वो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है और वो भुलावे में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी शुरू होती है जब वो अपने स्वरूप के बारे में समझता है कि वो है क्या। इस जगत में आप देख सकते हैं कि लोगों को बहुत गर्व रहता है कि उन्हें बहुत सारी बातें पता हैं। दिल्ली से वृंदावन का रास्ता कितना है बता देंगे खट से, भारत का प्रधानमंत्री कौन है बता देंगे, समाज के ऊपर कुछ टिप्पणी करनी हो तो कर देंगे, और किसी भी विषय पर प्राय बोलेंगे और चर्चा होती भी रहती है और उसमें बहुत गर्व भी करते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कितनी सारी न्यूज़ रोज आती रहती है, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाना कहा जाता है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि वो है कौन। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो मुझे पता है, तो मेरा नाम ये है और मैं जानता हूं अपने बारे में, लेकिन वस्तुतः हम अपने शरीर का नाम बता रहे हैं और वो नाम भी समाज के द्वारा रख दिया गया है। शरीर का नाम पिंटू चिंटू मिंटू नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो यहां पे जो कृष्ण भावना का या आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD ये है कि जैसे भगवद गीता के अनुसार देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहयति। जैसे हम देखते हैं कि हमारा छोटा सा शरीर में हमारा जन्म हुआ था, उसके बाद अब थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, वस्तुतः शरीर बदलता है ना कि बड़ा होता है। ऐसी भावना या ऐसा मोह उत्पन्न होता है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े नहीं होते हैं, हम शरीर का परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, देहांतर अनुभव कर रहे हैं। ये बात समझ में आना चाहिए, इस चीज को भगवान भगवद गीता में बताते हैं। अब इसका उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति एक कपड़े को परिवर्तित करता है, मतलब कपड़ा पहन रहा हुआ होता है और दूसरा कपड़ा पहन लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जब एक कपड़ा खराब हो जाता है या मैला हो जाता है तो हम दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं, और फिर ये कपड़ा खराब हो जाता है तो फिर हम दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमने कपड़े को पहन लिया है, कपड़े को परिवर्तन कर लिया है तो हम परिवर्तित हो गए। तो ये बात व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरा कुर्ता मुझसे भिन्न है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शरीर से भिन्न हूं। और जब मृत्यु होती है तो मात्र शरीर का परिवर्तन होता है, जो शरीर का परिवर्तन इस जीवन में भी हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे छोटेपन का जो शरीर था हमारा वो चला गया, अब हम वैसा नहीं दिखते हैं, तो क्या हम रोते हैं? तो जो धीर पुरुष है वो समझता है कि उसका उसकी जो अस्तित्व है वह उसके शरीर से भिन्न है। इस संबंध में एक और बात विचारणीय है जो आप विचार करके देख सकते हैं, और वो ये है कि बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को कभी यही नहीं लगा कि हम परिवर्तित हो गए। हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमको वही लगता है कि हम वही व्यक्ति हैं, और हमारे माता पिता को वही लगता है कि हम वही व्यक्ति हैं जिसको उन्होंने जन्म दिया था। साइंस के अनुसार 7 साल में हमारा शरीर का हर कोशिका परिवर्तित हो जाती है। तो मान लीजिए आप 20 साल के हैं या 21 साल के हैं, तो आपका शरीर 3 बार पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। तो कौन वो वही व्यक्ति है जो इस शरीर को धारण कर रहा है? जैसे मैं कोट और शर्ट पहना हुआ हूं, उसी प्रकार से मैंने इस शरीर को पहना हुआ है। तो ये भगवद गीता का पहला विज्ञान है। इसकी एक और उदाहरण दिया जाता है, और कभी कभी लोग प्रश्न करते भी हैं कि भाई समाज का कल्याण होगा कैसे, कैसे कल्याण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी संबंध में बताते हैं कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कल्याण करें किसका, ये हम किसका कल्याण करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति के पास कार है और वह उस कार में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए वो डीजल भराने के लिए जाता है तो वो स्पष्ट जानता है कि कार में डीजल भरा रहा हूं, मैं कार नहीं हूं। कार के टायरों में हवा है कि नहीं, कार में डीजल है कि नहीं, इंजन ऑयल है कि नहीं, ये जानना आवश्यक है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है कि मैं कार से कहां जा रहा हूं। कार का रखरखाव करना भी उचित है बिल्कुल, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस कार से मैं जा कह रहा हूं। और कभी कोई व्यक्ति अगर डीजल भराए और उसके बाद उसे पूछे भाई अभी कहां जा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, बस तुम डीजल भर दो। और उससे भी बड़ा ज्ञान ये होगा जब हम सोचेंगे कि जब डीजल हम भर रहे हैं तो मैं संतुष्ट हो रहा हूं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति इस शरीर से भिन्न है। देही मतलब देह को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला। अब एक और विषय है इस संबंध में, और वो ये है कि किस प्रकार से हमारे देह का परिवर्तन हो रहा है इस शरीर से और इंद्रियों से। इंद्रियों का अर्थ है आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि, हाथ पैर, इनसे हम कुछ कार्य करते हैं। और ये स्थूल इंद्रियां हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं। और उसके बाद हमारी एक सूक्ष्म इंद्रिय है, इसे कहते हैं हमारी मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये स्थूल शरीर है, ये तो हमें दिखाई पड़ता है, इससे हम कुछ कार्य करते हैं। और हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ। तो जब हम कुछ अपने हम कोई भी कार्य अपने शरीर से करते हैं तो उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ जाती है। आप समझ सकते हैं, जिसने मान लीजिए कभी कोई शराब नहीं पी है तो उसके मन में शराब पीने की इच्छा अपने आप नहीं आती है, और जो व्यक्ति शराब पीता है उसको बार बार इच्छा आती है शराब पीने की। तो यानी कि कोई कार्य हमारे, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई भी हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव, उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती ही है। तो मन पे इस प्रकार से जब छाप पड़ती है तो मन में इच्छाओं का निर्माण होता है, और जब मन में इच्छाओं का निर्माण होता है तो उसके अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त करना पड़ता है, और व्यक्ति को उसी प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई इस जीवन में मांस इत्यादि खा रहा है या बहुत खराब खराब चीजें कार्य कर रहा है, लोगों का वध कर रहा है या बहुत घोर कार्य कर रहा है, तो अगले जन्म में उसको प्रकृति के द्वारा एक बाघ का शरीर दे सकते हैं या सूअर का शरीर मिल जाता है, या और अगर तमोगुण में रहता है तो फिर उसको पेड़ इत्यादि का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो उससे हम ये देख रहे हैं कि एक जीवात्मा अपनी चेतना का निर्माण करता है इस जीवन के कार्यों के द्वारा, पर्टिकुलरली जब वो मनुष्य शरीर में होता है। और वो जैसे उसकी चेतना मृत्यु के समय होती है, उसी प्रकार उसके कर्मों के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार अगला शरीर प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और उसमें एक विशिष्ट प्रकार के पिता के वीर में वो आत्मा को स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा मां के गर्भ में प्रवेश करके और वो प्रकट होता है। ये प्रक्रिया है आत्मा के देहांतरण की। आप कहेंगे हमें दिखाई तो नहीं पड़ता है। देखिए, दिखाई तब पड़ेगा जब हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होगी। जैसे अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो व्यक्ति जानता है कि गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन देख रहा है गाड़ी खराब है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि गाड़ी खराब होने का कारण क्या है, उसको रिपेयर कैसे किया जाए। लेकिन वही एक मैकेनिक उस गाड़ी को देखता है तो वो समझ पाता है कि गाड़ी क्यों खराब है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो यानी कि व्यक्ति आंखों से नहीं, ज्ञान के द्वारा देख रहा है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा किस प्रकार से इस जन्म के कार्यों के द्वारा हमारी इच्छाओं का निर्माण होता है, और उन इच्छाओं के कारण और उन कर्मों के कारण हमारी चेतना का निर्माण होता है, और उस चेतना के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। इस संबंध में और बात बताते हैं भगवान भगवद गीता में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारमिति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। ये 7वें अध्याय का श्लोक है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये जो जगत में हम जो भी जड़ पदार्थ देखते हैं, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु, आकाश इत्यादि में, मन, बुद्धि और अहंकार में भी हम कोई चेतना नहीं देखते। जो वस्तुएं जड़ हैं, जो जीवित नहीं हैं, उनमें ये चेतना नहीं होती है कि वो हैं। जैसे अगर मैं आपको भी पूछूं कि क्या आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उत्तर दे सकते हैं हाँ हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं अपने मोबाइल को करूं कि क्या तुम इस क्लास को सुन रहे हो, तो ये चेतना, ये अनुभूति उसको नहीं हो सकती है। अगर आप अपने फोन से सुन रहे हैं तो फोन को कोई अनुभूति नहीं हो रही है कि प्रवचन सुना जा रहा है या गाना सुना जा रहा है। तो यानी कि ये इसके द्वारा व्यक्ति समझ पाता है कि जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है, या मृत वस्तु में क्या अंतर है। तो यही बात भगवान गीता के अगले श्लोक में बताते हैं आत्मा के बारे में। अपरे मृतस्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है
जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे एक फैक्ट्री में जीवित लोग होते हैं और उसमें बहुत सारा पदार्थ होता है, नट बोल्ट होते हैं, मशीन होती हैं, तो उनका उपयोग लोग करते हैं और वो लोग जीवित होते हैं। तो यानी ये जो आठ प्रकार की जड़ शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें कोई चेतना नहीं होती है, लेकिन इन पदार्थों को या इन इन अवयवों से बने हुए, यानी इन वस्तुओं से बने हुए पदार्थों का भोग जीवात्माएं कर रही हैं, और वो जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, या कह सकते हैं कि चेतना से युक्त शक्तियां हैं। हम सब लोग इस ज्ञान से युक्त हैं कि मैं हूं, आप भी जानते हैं कि आप हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आप अन्य लोगों से भिन्न हैं, आप अपने रूम से भिन्न हैं, आप रूम में हैं, लेकिन रूम को, आपके कमरे को ये अनुभव नहीं है कि आप उसमें बैठे हुए। तो ये व्यक्ति को समझना चाहिए जड़ पदार्थ में और जीवित चेतना में, आत्मा में क्या अंतर है। और जब ये आत्मा इस शरीर को त्याग देती है तो उस शरीर को काटिए, जलाइए, कुछ भी करिए, वो शरीर कोई प्रतिवाद नहीं करता है। लेकिन अन्यथा अगर एक पिन भी मार दी जाए तो आत्मा तुरंत, आत्मा के कारण शरीर में शरीर चेतनी भूत होता है। जैसे करंट के कारण बल्ब में रोशनी होती है, तो बल्ब में अपने आप रोशनी नहीं होती है, लेकिन करंट जब प्रभावित होता है तो फिर उससे वो रोशनी प्रकाशित होती है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि हम अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन शरीर का कार्यान्वित होने का कारण है क्योंकि आत्मा का उसमें स्थान रहता है, आत्मा के कारण उस प्रकार से वो चेतनी भूत होता है। और ये जो आठ प्रकार के तत्व हैं, पांच तत्व तो हैं वो स्थूल हैं जो दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और तीन तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म ही दिखाई नहीं पड़ते। तो जो स्थूल एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल इत्यादि, इनसे हमारा स्थूल शरीर बना है। आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी से, जल से, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ है, और साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो जैसे अभी ज्यादा चल रहा है तो आप समझ सकते हो इस बात को कि हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, तो जो शर्ट पहना है वो आंतरिक वस्त्र है, और जो स्वेटर इत्यादि पहन लेते हैं या कोट पहन लेते हैं वो बाह्य वस्त्र है। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है वह हमारा हमारा कह सकते हैं ये स्वेटर की तरह जो दिखाई पड़ता है बाहर के लोगों को, और जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर है जो कि हमारे अधा अंतः वस्त्र की तरह, अंतः वस्त्र मतलब शर्ट इत्यादि है, जिस लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पिंजरा है इस शरीर जिसमें आत्मा फंसी हुई है, और अपनी आसक्ति के कारण, और बार बार, क्योंकि ये शरीर जो है इसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव होता है, इस शरीर के में जन्म लेना पड़ता है, बीमारी आती है, वृद्धावस्था होती है, फिर मरना पड़ता है। तो आत्मा इस शरीर में आसक्त होने के कारण इन दुखों को भोग रही है। इसका संबंध में कथा आती है। एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के पास एक सोने का पिंजरा था, तो उस सोने के पिंजरे को वो बुढ़िया खूब चमकाती थी, लेकिन जो उसके अंदर की चिड़िया थी उसको वो कुछ नहीं देती थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चिड़िया कुछ समय के बहुत बहुत वीक हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी, और ये बुद्धिमानी नहीं है कि पिंजरे को चमकाया जाए लेकिन आत्मा के चिड़िया को कुछ ना दिया जाए। उसी प्रकार से पूरी दुनिया केवल शरीर को भोगने या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही जुटी पड़ी है, और इसके लिए कोई इतना बड़ी दिक्कत नहीं, शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य भोग नहीं है। इस मानव शरीर से व्यक्ति को भगवान की जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करके इस देहांतरण की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि इस जगत में सात प्रकार के दुख हैं, उसका उपयोग ना करके केवल व्यक्ति डीजल भरने का कार्य करता रहे अपनी गाड़ी में या अपने शरीर में। डीजल का मतलब इस प्रकार से गाड़ी में डीजल भरता रहे, गाड़ी से कहीं जाए ही नहीं, इधर उधर घूमता रहे, और उसी प्रकार से अपने शरीर को भरण पोषण तो करता रहे, लेकिन शरीर से वो कार्य ना करे जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सके। तो ये बहुत बड़ा दुख है, और जब तक इस प्रकार के व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है तब तक उसको हार स्वीकार करनी पड़ती है। पराभवस तावदबोध जातो न तो जिज्ञासतम आत्म तत्वम, यानी कि जब तक व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता कि वो कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, तब तक बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन में व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और वह है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। आत्मा के तत्व के बारे में एक और बात बताई जा रही है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या है। तो इस जगत में आत्मा के साइज के बारे में श्वेता शतर उपनिषद से आता है, बालाग्र शत भागस्य शतिधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः सचनंताय कल्पते, कि हमारे बाल जो है उसके अग्र भाग को अगर 10,000 बार छोटा कर दिया जाए, यानी पहली बार 100 किया जाए पर 100 को भी 100 भाग कर दिया जाए, तो इतना छोटा आत्मा का स्वरूप है। तो आप कहेंगे इतनी छोटी आत्मा में इतनी शक्ति कहां से आई, क्योंकि ये चिन्मय तत्व है, स्पिरिचुअल है, इस कारण से इतना छोटा होने के बावजूद भी आत्मा में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े शरीर को भी क्रियान्वित करती है। ये बहुत अचिंत है समझना, बुद्धि के द्वारा हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि से भी परे आत्मा यानी हम स्वयं हैं, एक बात। दूसरा बात यह है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा इतनी छोटी है तो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। यहां पे हम लोग थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे कि जब कोई वस्तु बहुत बृहत यानी बहुत बड़ी होती है यानी असीमित है, तब भी हम सोचेंगे कि यह है उसका कोई रूप नहीं होगा, क्योंकि जैसे रूप होगा उसकी सीमा हो जाएगी, और अगर वो सीमा हो गया, रूप हो गया, तो असीमित कैसे हो सकता है। उसी तरह से हम सोचते हैं कि अगर कोई वस्तु नितांत छोटी है तो कोई उसका स्वरूप नहीं होगा, लेकिन ये सब भौतिक धारणाएं हैं, ये सारी बातें भौतिक वस्तुओं पे लागू होती हैं। आत्मा चिन्मय तत्व है और भगवान भी चिन्मय तत्व है, तो भगवान आध्यात्मिक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, और वो असीमित है, और असीमित होते हुए भी उनका रूप है। और उसी प्रकार से जीवात्मा एकदम छोटा है, अणु है, लेकिन अणु होते हुए भी उसका स्वरूप है। इसके बारे में तो हम आगे के क्लासेस में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हमको समझ में आना चाहिए शास्त्र के आधार पर कि ये नहीं है कि जीवात्मा का कोई स्वरूप नहीं है अगर वो छोटा है तो। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि आत्मा बन रही है, नहीं आत्मा नहीं बन रही है, आत्मा अनंत है, आत्मा की कोई गणना नहीं हो सकती है। अब ये भी हमारे लिए छोटी सी बुद्धि से समझना मुश्किल है कि अनंत का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई नंबर सेट करने का प्रयास करेंगे कि हाँ इतना होंगी आत्मा, इतना होंगी, लेकिन वस्तुतः आत्मा अनंत है। अब आत्मा के हमने तत्व के बारे में चर्चा किया, आत्मा के स्वरूप के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, आत्मा है किस प्रकार से, हम लोग वास्तविक किस प्रकार के हैं। उसे बोला जाता है सत, चिद और आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत, यानी हमेशा से रहने वाली। हमेशा का अर्थ है ना तो आत्मा कभी हुई है, ना कभी हो रही है, और ना कभी होगी। ऐसा कोई समय नहीं था कि आप और मैं और लोग ना रहे हों, हमेशा से हम लोग रहे हैं, नित्य रहती है। चित मतलब ज्ञानपूर्ण, ज्ञानमय। आत्मा को एक ज्ञान रहता है, और ज्ञान शक्ति का एक मुख्य बात है जो हमने आपको बताया था कि मैं हूं और मैं अन्य लोगों से भिन्न हूं। और ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि बाकी जितना भी जड़ पदार्थ हम देख रहे हैं उसमें ये तत्व या ये शक्ति नहीं है। और आनंद मतलब परमानंद, मतलब हमेशा अपने स्वरूप में जो आत्मा है वो उस प्रकार से आनंद में रहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस समय जड़ पदार्थ से एक के भावना करना, अर्थात अपने को शरीर मानने की वजह से हम लोग दुख भोग रहे हैं, और ये ऐसी ही स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो, और स्वप्न में वो बुरे बुरे स्वप्न देखने के कारण दुख भोगता रहता है, सोचता है उसे गला काटा जा रहा है या उसको मारा जा रहा है, लेकिन वस्तुतः कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो अपने बेड पे शांति से सो रहा होता है। तो इस प्रकार से आत्मा जब तक अपनी पहचान शरीर से करती रहेगी, उसके कार्य ऐसे ही होंगे जो शरीर के आधार पे हैं, और उसके कारण उसको दोबारा एक के बाद एक शरीर प्राप्त होते रहेंगे, और उन शरीर से उसको दुख भोगने पड़ेंगे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद ये जरूर पूछता है कि वो है कौन, और उसको प्रामाणिक स्रोतों से जानने के प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। और इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम लोग अगले अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि भगवान हैं, अर्थात कैसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान होते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे कि भले ही हम भगवान को भी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं उससे जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे।